पृष्ठ 17 अध्याय 2 दक्षिण में उर्दू साहित्य। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत से बहुत भिन्न दिख पड़ती है। चिरकाल से ऐसे युग आए हैं जब दक्षिण थोड़े थोड़े समय के लिए उत्तर के अधीन हो गया है, परंतु जरा सा अवसर मिलते ही उसने फिर अपने जीवन को उत्तरी भारत की पराधीनता से मुक्त कर लिया। उर्दू साहित्य का अध्ययन करने वालों को भी इतिहास के इस विशेष पहलू को सामने रखना चाहिए। यह कहना ठीक नहीं होगा कि दक्षिण भारत सदैव उत्तरी भारत से अलग रहा, इसलिए इसमें यह पृथकता पाई जाती है क्योंकि प्रारंभिक आर्य प्रभाव के बाद बुद्ध मत का संचार भी उत्तर की ही ओर से हुआ और 6वीं-7वीं शताब्दी से दक्षिण भारत के बड़े भाग में जो राज्य स्थापित हुए उनकी जड़ भी उत्तरी भारत ही में मिलती है। प्रसिद्ध चालुक्य वंश वाले उत्तर ही से वहाँ पहुँचे थे, यही बात यादव वंश के लिए भी कही जाती है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुसलमानों के आने से पहले भी दक्षिण भारत के निवासी उत्तरी भारत की बोलियों से अपरिचित नहीं थे। जब आधुनिक आर्य भाषाओं का युग प्रारंभ हुआ, उसके 200 वर्ष के अंदर ही मुसलमान उत्तर से दक्षिण में पहुँच गए और उस पुराने संबंध ने एक नया रूप धारण कर लिया। मुसलमान बादशाहों में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं दक्षिण भारत में पहुंची और दिल्ली के केंद्रीय राज का क्षेत्र नीचे दूर तक फैल गया। यह 13वीं शताब्दी थी। मुसलमान सेनाएं, कर्मचारी, पेशे वाले और उत्तर भारत के लोग अपने साथ वह मिलीजुली भाषा भी दक्षिण ले गए जो अभी भली भांति बन भी नहीं पाई थी। यह तो सभी जानते थे कि महाराष्ट्र को छोड़कर जहाँ एक आर्य भाषा बोली जाती थी, सारे दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं प्रचलित थीं। उन प्राचीन भाषाओं में साहित्य भी उपलब्ध था। ये भाषाएं आर्य भाषाओं से इतनी भिन्न थीं कि इनके संपर्क में कोई नई भाषा जन्म नहीं ले सकती थी। इसलिए उत्तर भारत के जो सैनिक, कर्मचारी, उनके परिवार, व्यापारी, सूफी, फकीर वहां बस गए थे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए या तो किसी द्रविड़ भाषा का प्रयोग कर सकते थे या उसी मिलीजुली नई भाषा का प्रयोग कर सकते थे जिसे वह दिल्ली से अपने साथ लाए थे। इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी पृष्ठ संख्या 18 सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जवाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्षिणी कहकर पुकारा। ज्ञातव्य रहे कि दक्षिणी शब्द का उर्दू में कई प्रकार से उच्चारण प्रचलित है, परंतु हमने इस पुस्तक में यही उच्चारण ग्रहण किया है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो दक्षिण भारत में उर्दू के फैलने में सहायक हुई और जिसकी ओर पहले अध्याय में संकेत किया जा चुका है, 14वीं शताब्दी में हुई, जब मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को, जिसे बाद में दौलताबाद कहा गया, अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली के अधिकांश वासियों को वहां जाना पड़ा। राजनीतिक दृष्टि से यह घटना जैसी भी हो, भाषा निर्माण की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि महाराष्ट्रीय और द्रविड़ भाषाओं के बीच में उत्तरी भारत की एक बोली धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से साहित्यिक रूप धारण कर रही थी। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि उस समय तक उत्तर भारत में जहाँ उस भाषा ने जन्म लिया था, उसका अपना उल्लेखनीय साहित्य नहीं था। इस संबंध में यह भी याद रखना चाहिए कि यह हिंदुस्तानी भाषा अधिकतर शहरों और कस्बों तक ही सीमित थी। दक्षिण में मुसलमानों के बस जाने से यह भी हुआ कि महाराष्ट्रीय पर फारसी का गहरा प्रभाव पड़ा और वहाँ के हिंदू संतों और मुसलमान सूफियों की प्रेम मार्गी धारणा में भी एक प्रकार का सामंजस्य दिखाई देने लगा। परंतु द्रविड़ बोलियाँ ना तो उर्दू फारसी से प्रभावित हुई और ना उन्होंने विशेष रूप से इस विकसित होती हुई उर्दू या दक्षिणी उर्दू को ही प्रभावित किया। यह प्रभाव अधिकतर शब्दों के उच्चारणों में देखा जा सकता है, भाषा के साहित्यिक रूप में बहुत कम दिखाई देता है। 14वीं शताब्दी के मध्य में जब तुगलक बादशाह निर्बल हो रहे थे, दक्षिण भारत में फिर जान आई और वह उत्तर के केंद्रीय राज्य से अलग हो गया और वहाँ बाह्मनी राज्य स्थापित हुआ। यह राज्य उत्तरी भारत के राज्यों को देखते हुए बहुत कुछ भारतीय रंग रखता था। उत्तर भारत ईरानी और अरबी संस्कृति से प्रभावित था, पर दक्षिण इससे बहुत कुछ मुक्त था। इसीलिए यहाँ एक भारतीय आर्य भाषा को विकास का अच्छा अवसर मिला। अगर प्रसिद्ध इतिहास तारीख़े फिरिश्ता की जब ठीक बात मानी जाए तो यह मानना पड़ेगा कि कई बाह्मनी बादशाहों ने प्रशासन एवं राज कार्यालयों में हिंदी भाषा को माध्यम बनाया था। इसका अर्थ यह हुआ कि 14वीं शताब्दी का अंत होते होते वहाँ उर्दू भाषा प्रचलित हो गई थी। इसके फैलने के जहाँ और कारण थे, वहाँ एक बड़ा कारण यह भी था कि कई सूफी फकीरों ने अपने विचार इसी भाषा में प्रकट किए, जिससे कि उनके मानने वाले जो अरबी और फारसी से अनभिज्ञ थे, उनके विचारों को समझ सके। साहित्य के रूप में उस समय जो कुछ मिला है वह इन्हीं सूफियों की रचनाएं हैं। रचनाओं में पद्य भी है और गद्य भी।